जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरिनाम संकीर्तन की लील गोपाल। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं पांचवा स्कंद अध्याय पहला, महाराज प्रियव्रत का चरित्र, श्लोक क्रमांक 16। मुक्तो पितावद् बिभ्रित बिभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धम् अश्नन् अभिमानशून्या यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृण्ते। मुक्तो पितावद् बिभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमानशून्या यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते। मुक्तो पितावद् बिभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमानशून्या यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते। शब्दार्थ मुक्तः मुक्त पुरुष अपि ही तावत् तब तक विभ्रुयात् धारण करना चाहिए स्वदेहम अपना शरीर आरब्धम पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त अश्नन स्वीकार करते हुए अभिमान शून्य अभिमान रहित यथा जिस प्रकार अनुभूतम जैसा अनुभव किया गया हो प्रतियात निद्रा निद्रा से जगा हुआ किंतु लेकिन अन्य देहाय दूसरी देह के लिए गुणान गुणों को न नहीं वृंगते भोगता है। अनुवाद अर्थात इसी भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञा रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। तात्पर्य बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने उन्नत है, बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, तो फिर वे जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें। इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं दिखती है, किंतु जगने पर मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उनका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि कोई यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञात वश जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार से कर्म करता है कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है, माम चयो अविभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण स्वरूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वह अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हो, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन वह भगवान के धाम को वापस जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखां नितांश। नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे प्रथम मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करूंगा, और खासकर हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु से, कि मैं इस भागवतम के विषय पे कुछ कह सकूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आज बहुत दिनों के बाद टेंपल हॉल में हम एकत्रित हुए हैं भागवतम के लिए। संगात शक्ति कलियुगी का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इस तात्पर्य में, इस ट्रांसलेशन में, जैसे ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे एक जो प्रगत व्यक्ति है वो कैसे जीता है, किस चेतना से। तो हमें जैसे पता है कि दक्ष जो है, जब प्रचेताओं के बाद दक्ष की बारी आई राज्य करने की, तो दक्ष जंगल चले गए ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो इसलिए वहां पे कोई नहीं था राज्य करने के लिए। तो दक्ष, ऐसे बोला गया है कि 3 मन्वंतर के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के लिए गए जंगल। तो कोई राज्य करने के लिए नहीं था, इसलिए स्वयंभू मनु प्रियव्रत महाराज के पास आए और उनको निवेदन किया कि आप कृपया करके राज्य कीजिए। तो मेरे मन में प्रश्न आया था कि अगर दक्ष महाराज, दक्ष जो है तपस्या करने गए थे इतनी लंबी लंबे समय के लिए, तो स्वयंभू मनु ने उनके पास क्यों नहीं गए कि आप थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी कर लो तपस्या और फिर से आके राज्य संभाल लो। वो प्रियव्रत महाराज के पास क्यों गए जो कि दादा परदादा, पोते नहीं करना चाहिए तो परदादा को बुलाया तो, क्योंकि दोनों भी तपस्या कर रहे थे और दक्ष तो वैसे भी दक्ष है, हमें पता है दक्ष किस लिए। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने फिर राधिका वल्लभ प्रभु को एक प्रश्न पूछा था मेल करके, तो उन्होंने कहा कि जो दक्ष था वो अपने तपस्या में, अपने ध्यान में बहुत मग्न था, तो स्वयंभू मनु को उनको डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं हुई कि वो इतने ध्यान में मग्न थे, इसलिए वो प्रियव्रत महाराज के पास है। तो ऐसे उन्होंने मेल में लिखे, अभी रेफरेंस पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट कहाँ से, लेकिन वो ऐसे मैं सोच रहा था कि जैसे हम भी जब जप करते हैं तो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। जब मैं मैनेजर था कुंज बिहारी में और कुछ सेवा चैंटिंग के समय सेवा किससे करवानी है, मैं देखता था कौन जप में ज़्यादा सो रहा है तो उसको सेवा दे देने का, कहने में वो सो ही रहा है। लेकिन जो भक्त अच्छे से जप कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने का मन नहीं करता तो ऐसा जप करना चाहिए। तो दक्ष महाराज इतने अच्छे से जप या ध्यान कर रहे थे कि स्वयंभू मनु को उनको उनको ये सेवा बोलने की इच्छा नहीं हुई, वो प्रियव्रत महाराज के पास आए। तो जो भी है, लेकिन प्रभुपाद बोलते कि भगवान की इच्छा, तो लेकिन हमारा विषय आज अलग है। जो शिल प्रभुपाद का तात्पर्य में वो आखिरी लाइन जो है, वह भगवान के धाम को वापस जाता है, इधर लिखा है कि बैक होम बैक टू गॉडेड। तो हमारा विषय बैक होम बैक टू गॉडेड, प्रभुपाद का आखिरी लाइन जो है। तो जब मैं मायापुर में था फ़रवरी में एक महीना उधर, तो उधर कई सारे प्रभुपाद के शिष्य आए थे वरिष्ठ जीबीसी मीटिंग्स के लिए, तो उसमें एक महात्मा प्रभु भी थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया क्लास दिया उधर, और उनका विषय भी यही था बैक होम बैक टू गॉडेड। तो हमारा भी वही विषय है। तो वो बता रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद काफी सारे तात्पर्यों के आखिर में ये स्टेटमेंट लिखते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम बैक टू गॉडेड, सर्व कृष्णा एंड गो बैक होम बैक टू गॉडेड। ऐसे कई बार तात्पर्य के एंड में, और इस तात्पर्य में भी वैसा ही है, जो इस चेतना से जीता है, जो ट्रांसलेशन में लिखा है, वो व्यक्ति भगवान के धाम जरूर जाता है, बैक होम बैक टू गॉडेड। तो कई सारे तात्पर्यों में हम ये पाएंगे, और कई सारे प्रभुपाद के लेक्चर में भी अंत में प्रभुपाद यही कहते हैं, परफेक्ट योर लाइफ एंड इन दिस वेरी लाइफ गो बैक होम बैक टू गॉडेड। तो महात्मा प्रभु ये बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद बहुत फोकस थे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आखिर में बैक होम बैक टू गॉडेड एंड दैट ऑल्सो इन दिस वेरी लाइफ। प्रभुपाद ऐसे नहीं कहते थे कि बाद में कुछ समय के बाद, इन दिस वेरी लाइफ गो बैक होम बैक टू गॉडेड। तो महात्मा प्रभु बता रहे थे कैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बार मायापुर में ही, सब भक्त बैठे थे भागवतम क्लास के एंड में, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली एंड फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड। सभी हरि बोल सभी भक्त बोलते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई उधर आए मायापुर मंदिर में, चंद्रोदय मंदिर में, तो भक्त बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने कल ऐसे प्रवचन में कहा कि यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली एंड फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉडेड इन दिस वेरी लाइफ। तो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो बोले इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल प्रभुपाद ने बोला कल प्रवचन में, उनके शिष्य बता रहे थे, वो बोले शास्त्रों में कहा गया है कि तीन लाइफ टाइम तो मिनिमम लगते ही है, कितना भी सिंसियर व्यक्ति क्यों ना हो, तीन लाइफ टाइम के पहले नहीं जा सकते। तो बोले लेकिन प्रभुपाद ने कहा कल कि आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉडहेड इन दिस वेरी लाइफ। बोले नहीं, पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है। तो इफ प्रभुपाद हैज सेड देन इट इज पॉसिबल। तो शुद्ध भक्त है वो शास्त्र के विरुद्ध जाके भी तो पॉसिबल है। तो प्रभुपाद फिर महात्मा प्रभु बता रहे थे लेकिन क्या है कंडीशन, चैंट अटेंटिवली अटेंटिवली। तो फिर प्रभु जी बता भी रहे थे कि कैसे अटेंटिवली और अटेम्प्टिंग टू बी अटेंटिव, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स। तो जो प्रयास कर रहे हैं ध्यानपूर्वक जप करने का वो भी जा सकते, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो वो जाएंगे, लेकिन जो प्रयास भी कर रहे हैं तो उनको भी लेके जाएंगे। तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि कैसे जब जप में सबसे बड़ी दो बाधाएं क्या है, एक तो लय और दूसरा विक्षेप। तो लय यानी सोना, नींद आ जाती, निद्रा, और विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन। तो गौरांग गुरु बता रहे थे कैसे कि लय लीड्स टू प्रलय। अगर आप जप में लय लीड्स टू प्रलय और विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो बोथ लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो बहुत खतरनाक है दोनों भी। तो इसलिए जप के समय अटेंटिव, अटेंटिव रहने का प्रयास अगर कोई करता है और चार नियमों का पालन करता है तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उन्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा इस जीवन में ही। ऐसे तो एक बार मैं एक प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए गया था शिरवड़, और उधर से आते समय थोड़ा लेट हो गया, 10:30 बज गए। तो एक भक्त ड्राइविंग कर रहे थे कार, और मैं पीछे बैठा था जब कर रहा था। तो गाड़ी एकदम फुल स्पीड से 80-90, कोई नहीं था रास्ते पे, अंधेरा। तो शिरवड़ से हम वेल्ला जा रहे थे, तो वो भक्त चला रहा था स्पीड में, और अचानक गाड़ी और डिवाइडर के ऊपर थाड़ ठैश हो गए, ऐसे बाउंस हो गए रोड के ऊपर। मैं डर गया, मतलब क्या हो गया। वो फिर वो भक्त ने कैसे कोई संभाली गाड़ी, मैं बोला क्या हो गया बीच में, इतना जोर से एक्सीडेंट होने वाला था। बोले प्रभु मुझे नींद लग गया, गाड़ी चला इतने फास्ट, नींद कैसे, अच्छा चला रहे थे आप इतने देर तो अचानक कैसे नींद आ गया। बोले प्रभु जी क्या हो गया, मैं सोचा मैं शांत बैठा हूं थोड़ा जप करता हूं। जब जब नहीं कर रहे था तो अच्छा चला रहे थे, वो सोचे कि मैं थोड़ा गाड़ी चला था जब करता हूँ। जब करते करते यानी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब शुरू करना है नींद शुरू करना है, इट्स इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट सिनोनिमस, चैंटिंग स्टार्ट चैंटिंग एंड स्टार्ट स्लीपिंग। तो खतरनाक है, दैट्स व्हाई लय लीड्स टू प्रलय, डेंजरस। तो जैसे कहावत है कि व्हेन गोल बिकम्स हेजी वन बिकम्स क्रेजी। तो जो गोल है हमारा भगवत धाम जाना, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर वो याद होगा तो हमें जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी छोटे मोटे क्लेश आते हैं, तो उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। तो गोल जो है भगवत धाम जाना, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि सुखी संसारी असावे चित्त पर ब्रह्मी ठेवावे। मीन्स यू लिव नाइसली हेयर इन दिस वर्ल्ड, बट ऑलवेज थिंक ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट यू हैव टू गो देयर बैक होम बैक टू गॉडहेड। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की चाय। तो गौरांग प्रभु और एक उदाहरण दे रहे थे कैसे वो एक बार लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में बहुत काफ़ी भीड़ थी लोकल ट्रेन में, तो कहीं तो बोरीवली जा रहे थे, तो काफ़ी देर से वो खड़े थे, आधा घंटा के आसपास खड़े थे। और फिर बाद में एक व्यक्ति था उधर जो बैठा था, वो खड़ा हो गया और बोला कि स्वामी जी आप बैठिए कृपा करके। गौरांग गुरु बैठ गए, गौरांग गुरु सोचा अरे वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन दो ही मिनट में उसका स्टेशन आने वाला था, इसलिए वहाँ अरे दो तीन मिनट वो खड़ा रहा और बाद में फिर चला गया, स्टेशन आया तो उतर गया। तो गौरांग गुरु बता रहे थे कि कैसे अगर उसको उसको इनकन्वीनियंस हुआ रहेगा 5 मिनट, लेकिन वो इनकन्वीनियंस उसको ज़्यादा लगा नहीं क्योंकि उसका गोल क्लियर था कि मेरा स्टेशन नज़दीक है, इसलिए 5 मिनट खड़ा रह गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो व्हेन द गोल इज क्लियर तो इनकन्वीनियंस या कुछ क्लेश आते हैं जीवन में तो वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऐसे ही अगर हमारा गोल है, ध्येय है कि भगवत धाम जाना है इसी जीवन में, तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है उससे ज़्यादा हम विचलित नहीं होंगे, ऐसे गौरव प्रभु बता रहे थे। और सुदामा प्रभु ये कहते हैं क्लाइन यू शुड कंट्रोल BTG टू गो टू BTG, यू कंट्रोल बेली टंग जेनाइटल्स देन यू विल गो टू बैक टू गॉड इट। तो ये भी सुदामा प्रभु फॉर इफ यू कंट्रोल BTG विल गो टू BTG। तो कैसे हमें इंद्र तृप्ति को त्यागना है तो हम अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो जैसे श्लोक आता है भागवतम में, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः न ईश्वर अशुभम धत्ते स्वे महिमनि स्थितस्य च। कि दोष दृष्टि जो है हमें, हम इधर उधर दोष देखते हैं, लेकिन दोष किस में देखना चाहिए? जो इंद्र तृप्ति के प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसमें दोष देखना चाहिए, इसमें बड़ा दोष है। इंद्रिय तृप्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता, ये दोष देखना चाहिए। जो ऐसा करता है वो अपने महिमा में स्थित रहता है, ऐसे बोला है। तो भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर ये कहते थे, इंग्लिश में बताता हूं, अ साधक यानी डिवोटी, हमारे जैसे जो साधक है, ये साधक इज इंटरनली शाक्ता, एक्सटर्नली शैवाइट एंड पब्लिकली वैष्णव। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोट है। तो साधक अंदर से शाक्त होता है, शाक्त, बाहर से शैवाइट और समाज में एक वैष्णव। यानी शाक्त यानी क्या? जो शक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एनर्जी मोर इंपॉर्टेंट एंड एनर्जेटिक, दे वॉन्ट टू एंजॉय द एनर्जी। जो भक्त साधक जो है अंदर से उसकी इच्छा रहती है इंद्र तृप्ति की, तो अंदर से शक्त होता है, शक्ति उसको, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द शक्ति इंटरनली। एक्सटर्नली इज शैवाइट, यानी जब डीलिंग होता है भक्तों के साथ तो इज इम्पर्सनल, शैवाइट से इम्पर्सनल, इम्पर्सनल डीलिंग्स, दैट इज एक्सटर्नली शैवाइट। एंड पब्लिकली जब प्रवचन, जैसे प्रवचन में बोलते हैं कि वी शुड बी डिवोटीज, वी शुड नॉट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, पब्लिकली वन इज वैष्णव। सो इंटरनली शाक्ता, एक्सटर्नली शैवाइट एंड पब्लिकली वैष्णव, दैट इज द पोजिशन ऑफ अ साधका। सो हमें अगर बैक टू गॉड जाना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू बी इंटरनली एक्सटर्नली एंड पब्लिकली वैष्णव, लाइक दैट। तो मैं एक शिक्षा अष्टकम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था जिसमें वो एक वृंदावन, गोलोक वृंदावन की एक सुंदर सी लीला बोलते हैं। अगर बैक टू गॉड जाना है तो हमें कुछ तो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि भगवान वहाँ क्या लीला कर रहे हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जैसे प्रभुपाद कहते थे कि दिस पिक्चर्स दे आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं। तो वो एक जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए गए थे शिक्षाष्टकम प्रभु, तो काफ़ी सारे भक्त थे वहाँ पे, लेकिन जो होश थे वो थोड़े नए थे, एक दो माला कर रहे थे। तो प्रवचन के पहले उनका इंट्रोडक्शन जो था वो होस्ट करने वाले थे, तो होस्ट थोड़े नए व्यक्ति थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया उनका और वो पढ़ने लगे। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे बीच में आज है हिज ग्रेस शिक्षा आशिक प्रभु। उनको शिक्षा आष्टक, उनको नए थे, उनको शिक्षा आशिक प्रभु, तो ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू किया उनका। तो बाद में उन्होंने प्रवचन के बाद एक व्यक्ति आके उनको बोलता है कि आपका नाम बड़ा रोमांटिक है। तो उस प्रवचन में प्रभु जी ने एक वो लीला कही, वो लीला बताना चाहता हूँ, आनंद वृंदावन चंपू। तो ये आनंद वृंदावन चंपू की एक लीला है सुंदर। तो एक बार वृषभानु और कीर्तिदा इन्होंने नंद महाराज यशोदा को इनविटेशन दिया प्रसाद के लिए, फीस्ट के लिए। तो जब मैसेज आया इनको, नंद महाराज यशोदा को, तो बहुत खुश हो गए कि अगले दिन बरसाना जाना है बड़े फीस्ट के लिए। तो यशोदा मैया ने कहा कृष्ण को कि कल जो है तुम जंगल नहीं जाना गाय चराने के लिए अपने दोस्तों के साथ, कल हमें जाना है बरसाना, हमें इनविटेशन आया है भोजन के लिए, तो कल दोस्तों के साथ नहीं जाना। तो कृष्ण बोलते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं सारे दोस्तों को लेके ही हम जाएंगे सब। यशोदा ने कहा अरे इतना सारा बड़ा नंबर, इनविटेशन सिर्फ हमको आया है, इतने सारे लोगों को नहीं लेके जा सकते। तो भगवान बोले कि अगर मेरे मित्र नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो यशोदा मैं बोली ठीक है तुम मत आना, हम चले जाएंगे। तो भगवान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार हो गए। फिर कृष्ण को लगा रहे मैं इधर पीछे रह जाऊंगा। तो कृष्ण ने बोला यशोदा को कि आज क्या हो गया कि ये सब जो मित्र है मेरे वो बीमार हो गए। तो वो तो है नहीं आज, तो मैं सोचा मैं भी हो लेता हूँ आपके साथ। ऐसे बोले अब तक कभी बीमार नहीं हुए। तो फिर उधर तभी कौन आ जाता है, ये खबर पहुंचती है मधुमंगल को। तो मधुमंगल वहां पे तुरंत हाजिर होता है और यशोदा मैया को कहता है मैं बीमार नहीं हूं। मैं आ सकता। तो यशोदा बोलती अरे इसको नहीं भी बोलेंगे तो उधर टपक आ जाएगा उधर, वो पहुंच जाएगा उधर। तो उसको भी लेके चलते हैं और फिर बाद में उनके साथ सुबल भी आ जाता है। तो फिर नंद महाराज यशोदा कृष्ण बलराम मधुमंगल और सुबल ये जाते हैं और फिर सभी जाते हैं बरसाना धाम। तो बरसाना में बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन किया है और सब जो स्ट्रीट्स जो रास्ते हैं सब जगह पे अच्छा डेकोरेशन किया है और सभी ये जाते हैं। तो वृषभानु और कीर्तिदा बड़ा उनका रिसेप्शन करते हैं, तो उनको अच्छे से बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनका पूजा करते हैं। और फिर यशोदा मैया जो है वो फिर किचन में जाती है देखने के लिए कि कैसा फीस्ट बना है। तो पीछे पीछे मधुमंगल भी जाता है और फिर यशोदा मैया देखती है कि बहुत लंबी लीला है थोड़ा शॉर्ट। तो फिर यशोदा मैया जाके देखती है कि इतना बड़ा फीस्ट बनाया है, बहुत बड़ा फीस्ट, और मधुमंगल ये देख के कूदने लगता है कि इतना बड़ा फीस्ट तो मैंने आज जिंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, वो सोचता है। तो फिर वहाँ पे राधा रानी भी होती है, तो राधा रानी के सर से थोड़ा पसीने की बूंद आती है तो यशोदा बोलती है कीर्ति दाऊ कि तुमने इस छोटी बच्ची को इतना सारा व्यंजन बनाने को लगाया तो ये अच्छा नहीं है। तो कीर्ति दाऊ बोलती है कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने थोड़े से व्यंजन बनाए और वो देख रही थी तो मैंने बोला तू भी थोड़ा सब्जी कटिंग वगैरह असिस्ट, जैसे असिस्टिंग होते हैं नीचे अपने किचन में तो वैसे असिस्ट करो, तो लेकिन उसने तो इतने सारे व्यंजन बनाए तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने भी उसको इतने सारे व्यंजन सिखाए नहीं कभी, वो कैसे सीखी पता ही नहीं। तो शिक्षाष्टांग प्रभु बोल रहे कि तभी तो यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब यानी सब हमने हमारे किचन में जो भी कुकिंग होता है अरे भक्त यूट्यूब से देखे कुछ कैसे करते तो राधा रानी ने इतने सारे व्यंजन बनाए। और फिर यशोदा बोलती है कि ठीक है सबको फिर बिठाते हैं, तो अरेंजमेंट भी दिया है कैसे, सबसे पहले बलराम जी, फिर उनके बाजू में नंद महाराज, फिर उनके बाजू में कृष्ण, और कृष्ण का एक तोता होता है जिसका नाम है विचक्षण, तो वो भी आता है, उसको भी बिठाते विचक्षण। तो ये जो विचक्षण है ये कवि कर्णपुर के भाई है जिनका नाम है रामदास, तो कवि कर्णपुर जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू लिखा है, तो उनके भाई, तो ये विचक्षण तोता भी आता है और उनके बाजू में है मधुमंगल और बाजू में सुबल, तो ऐसे बैठते हैं। तो फिर यशोदा बोलती है, मैं फिर कीर्तिदा बोलती है कि आप सब बैठी है और फिर राधा रानी सर्व करेंगी सबको। तो यशोदा बोलती है नहीं नहीं उन्होंने तो इतना सारा कुकिंग किया है तो नहीं, कीर्तिदा बोलती है कि नहीं राधा रानी ही सर्व करेंगी। तो यशोदा फिर बोलती है ठीक है, तो यशोदा डायरेक्शन देती है कि कैसा सर्विंग करना चाहिए, तो राधा रानी और उनके कुछ सखियाँ रहती है वो सर्विंग करते हैं, तो राधा ने पहले नंद महाराज को सर्विंग करती है और फिर चली जाती है। तो यशोदा मई बुलाती नहीं इधर आ जा इनको, बाकी लोगों को भी सर्व करो कृष्ण। तो राधा रानी थोड़ी शर्माती है तो फिर उनको भी सर्विंग करती है राधा रानी। तो जब मधुमंगल खाने लगता है तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, सोचता है, वो बोलता है कि मैंने आज तक इतना बढ़िया प्रसाद कभी जिंदगी में खाया नहीं, कभी इधर वृंदावन में कभी इतना बढ़िया प्रसाद बना नहीं। तो उछलने लगता है कि वाह क्या है। तो कृष्ण उसको चिमटे रही, शांत बैठ चुपचाप बैठ जरा चुपचाप खाओ। बोलता नहीं मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूं, इतना बढ़िया प्रसाद बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि बरसाना में सेटल हो जाऊंगे ऐसा एडिशन तो फिर मधुमंगल बाकी सब प्रसाद लेते हैं। तो मधुमंगल बोलता है कि राधा रानी जो है वो महालक्ष्मी का अवतार है, इतना बढ़िया प्रसाद बनाया है, शी इज एन एक्सपांशन ऑफ महालक्ष्मी। तो तभी जो तोता है कुछ तो बोलने की इच्छा करता है, तो यशोदा बोलती है हे द्विजराज बोलो। तो मधुमंगल बोलने लगता है तुम्हें नहीं, ये तोते को बोल रहे हो, वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन द्विजराज तो मैं द्विज ने ब्राह्मण, लेकिन जो पक्षी है उसको भी द्विज कहते हैं क्योंकि उसका भी दो बार जन्म होता है अंडे से और फिर बाहर आता है, इसलिए वो भी द्विज है। और एक द्विज होता है, दांतों को भी द्विज कहते हैं संस्कृत में, दो बार आते हैं ना तो ये द्विजराज जब यशोदा बोलते द्विजराज बोलो, तो मधुमंगल बोलने लगता है, तो बोलती है उसको बोलने दो, उसको कुछ तो बोलना है। तो तोता बोलता है विचक्षण ये मधुमंगल ने बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया? इसने कहा कि राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार है। तो यशोदा पूछते फिर क्या बोलना चाहिए? अरे महालक्ष्मी राधा रानी का अवतार है, ऐसा बोलना चाहिए। ओ ठीक है तो ये अपराध है, अपराध क्या मधुमंगल। तो फिर सर्विंग होता है और फिर आगे जो कृष्ण है वो राधा रानी को इस आंखों से इशारा करके बोलते हैं कि मुझे बस तुमने जो बनाया है वही सर्व करो, इधर उधर से किसने बनाया तो जो तुमने बनाया वही सर्व करो। तो राधा रानी वही सर्विंग कर रही, तो तभी ये जो इशारे कृष्ण राधा रानी को कर रहे हैं तो ये वो तोता देखता है और ये मधुमंगल देखता है, कुछ तो चल रहा है, ये अगर मेरे को कुछ तो आंखों से बोल रहे हैं, तो अभी वो एज इट इज मैं बता रहा हूँ। तो तभी मधुमंगल देखता है, तो मधुमंगल बोलता है राधा रानी को, भाभी मुझे भी थोड़ा सा दे दो। चुप, कृष्ण बोले भाभी अरे क्या बोल रहा है, चुपचाप चुप बैठो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। तभी तो यशोदा को सुनाई देता है और नंद महाराज को सुनाई देता है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि और बोलते हैं काश ये सच हो, हमारे घर में राधा रानी जैसे बहू आए, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन कृष्णा शर्मा जाते, तो फिर तभी फिर सब प्रसाद वगैरह हो जाता है सबका, जो सर्विंग करते हैं वो भी बैठते हैं, और फिर जाने का समय आता है। तो तभी यशोदा बोलती है कि कृष्ण बलराम और इन्होंने इतना बढ़िया जो राधा रानी ने प्रसाद बनाया वो टेस्ट किया है, अभी हमारे घर का ये प्रसाद इनको फीका लगेगा, तो कृष्ण खाएगा नहीं मेरे हाथ का। तो मैं ये विनंती करती हूँ, वो कीर्तिदा को बोलती है कि राधा रानी हर रोज आके कृष्ण के लिए भोजन बनाए। तो राधा रानी जब सुनती है अंदर तो उछलने लगती है, और सबसे ज्यादा खुश होता है मधुमंगल, हरी बोल। हरी बोल तो हर रोज मिलेगा। तो तभी फिर कीर्तिदा बोलती है कि ठीक है ये तो हमारा भाग्य है, हम फिर राधा रानी को हर रोज भेजेंगे कृष्ण के लिए कुकिंग करने के, लेकिन समाज क्या सोचेगा, समाज में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यशोदा बोलती है यस वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा मैं जानती हूँ। तो राधा रानी आके पावन सरोवर पे वहाँ पे कुकिंग करेंगे और वहाँ से हम ट्रांसफर कर लेंगे वो नंदगांव नंदग्राम हो पैलेस में, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर तब से राधा रानी पावन सरोवर में वहाँ पे कुकिंग होता है। तो मुझे पहले लगता था कि पावन सरोवर पे कुकिंग क्यों होता है, मुझे लगता था कुकिंग के लिए बहुत पानी लगता है इसलिए उधर शायद पावन सरोवर। तो बाद में पता चला कि ऐसा उसका हिस्ट्री है। तो और प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे राधा रानी हर रोज एक नया आइटम बनाती, तो कभी रिपीट नहीं करती राधा रानी, जो आइटम आज बनाया फिर से कल नहीं बनेगा, तो अलग अलग आइटम बनता है। तो जैसे हमारे जैसे नहीं, हम कभी मैं कभी कभी कुकिंग करता हूँ मंगल भोग, तो वो हलवा कभी उसमें लाल कलर डाल दिया तो लाल हलवा, पीला कलर डाल दिया तो पीला हलवा, हरा कलर डाल दिया तो हरा हलवा, तो ऐसा राधा रानी नहीं करती, अलग कलर डाला तो अलग आइटम, हर रोज अलग अलग आइटम, डिफरेंट आइटम्स विच आर नॉट रिपीटेड अगेन। तो शिक्षाष्टांग प्रभु कह रहे थे कि कैसे अगर हम जितना दिन हम इस भौतिक जगत में है उतना हमारा लॉस है, कि वो आइटम्स फिर से रिपीट नहीं होने वाले। तो हमें जल्दी से जल्दी भगवत धाम जाना है, तो मोटिवेशन कुछ भी हो लेकिन जाना है भगवत धाम। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एज इट इज लेक्चर। तो एक उदाहरण दे रहे थे सुंदर सा कि कैसे जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है संबंध है वो रूप गोस्वामी उसका एक एनालॉजी देते, उपमा देते कि ये परकीय रस जो है वो क्यों ज्यादा प्रिय है कृष्ण को। तो वो रूप गोस्वामी क्या उदाहरण देते हैं कि जैसा जो हाथी, एक छोटा जो हाथी होता है तो उसको एक खूंटे से बांधा जाता है उसका पैर, और जो खूंटा होता है बहुत छोटा होता है, कैसा खूंटा डाल दिया रहता है जमीन में और उसको बांधते हैं। तो ये हाथी बचपन से लेके बड़ा होता है तो खूंटे से बांधा होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये खूंटा है कुछ नहीं है, तो ऐसे ये कर देगा तो उखड़ जाएगा, लेकिन उसको लगता है नहीं मैं बंधा हुआ हूँ इस खूंटे से, तो वैसा ही रहता है। लेकिन जब कोई तूफान आता है, तो जब तूफान आता है तो वो हाथी तूफान से बचने के लिए भागता है, और जब भागता है तो खूंटा ऐसे ही उखड़ जाता है, वो सोचता है अरे मैंने सोचा ही नहीं ये खूंटा तो ऐसे ही था। तो वो तूफान के वजह से उसको एक शक्ति आती है, उसको रियलाइजेशन, इंटरनल रियलाइजेशन एंड आउटर एक्सप्रेशन, तो वो होता है। तो वैसे ही राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसमें कोई तूफान जब आता है, तूफान यानी सम ऑब्स्टेकल कम्स इन बिटवीन विच इज परकीय रस, तो उससे उनका प्रेम और भी बढ़ता है। तो ये उपमा रूप गोस्वामी देते हैं। तो ये है राधा कृष्ण का जो संबंध है, तो उसमें जब कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है तो प्रेम और बढ़ता है, इसलिए परकीय रस कृष्ण को ज्यादा प्रिय है। तो एक जब मैं मुंबई में था, जब जॉब कर रहा था, तो हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु मेरे काउंसिलर थे तभी। राधेश्याम प्रभु ने कहा था कि जब आप जॉब कर रहे हैं मुंबई में तो आप किसी को तो लोकल काउंसिलर ले लो, तो गौर गोपाल प्रभु को मैंने काउंसिलर चुना था। तो उनके मीटिंग्स में अटेंड करता था एवरी संडे, और कभी हमें कभी तो ऐसे महीने में या दो महीने में एक बार हमें वो कहीं तो लेके जाते थे अलग अलग जगह पे। तो एक बार हमें वो देहू लेके आए थे, देहू। तो उधर देहू में एक बहुत ही उन्होंने तुकाराम महाराज के अलग अलग पास टाइम्स वगैरह ले लाए बताए, और शाम के समय वो अभंग गा रहे थे अलग अलग तुकाराम महाराज के। तो वो मुझे आज भी याद है, यानी वो जो प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से, भंडारा डोंगर है उसके ऊपर गए थे हम, और प्रभु जी का हारमोनियम लेके, तो एक अभंग है वो गाता, बहुत अच्छा आज के टॉपिक के रिलेटेड। तो ये मेरा फेवरेट अभंग है तुकाराम महाराज का, बहुत अच्छा है। तो बहुत सुंदर तरीके से गाया था, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था मीनिंग गौर गोपाल प्रभु ने। तो मैं थोड़ा गाता हूँ और फिर वो एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। याज साठी केला होता अट्टहास, याज साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड भावा गोड भावा, आता निश्चिंतीने पावलो विसावा, आता निश्चिंतीने पावलो विसावा, खुंटली अधावा तृष्णेचिया, कवतुक वाटे जालिया वेचाची, कवतुक वाटे जालिया वेचाची, नाव मंगळाचे तेणे गुणे तेणे गुणे, तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी, तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी, आता दिवस चारी खेळी मेळी खेळी मेळी, याज साठी केला होता अट्टहास, याज साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड भावा गोड भावा। तो बहुत ही अच्छा अभंग है। तो प्रभु जी ने गाया था, और उसका मीनिंग भी और भी सुंदर है। तो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि याद साठी केला होता अट्टहास, कि इस दिन के लिए मैंने इतना प्रयत्न किया था। अट्टहास मीन्स कठोर परिश्रम, किस लिए किया था? शेवट चा दिस गोड़ वावा, कि आखिरी दिन जो है गोड़ मधुर मधुर हो। आता निश्चिंत ने पावल विसा, अभी मैं विश्रांति ले सकता हूं, आई एम नाउ फुल्ली सेटिस्फाइड। पावलो विसावा खुंटलिया धावा तृष्णी चिया, जो भी मेरे वासना काम वासना थी वो सब चली गई है, उसकी वजह से मैं इधर उधर भागता था, और अभी मुझे जितने वो मैंने कष्ट किए हैं उसका कौतुक वाटते, मैंने हिंदी में क्या बोलते कौतुक कौतुक वाटे झालिया वेचासी, यानी जितने भी मैंने कष्ट किए उसका भी मुझे एप्रिसिएशन गौरव अच्छा जो भी वो लग रहा है। नाव मंगळाची तेने गुणे, तो ये सब मंगलमय हो गया अभी। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी, जो मुक्ति है वो मेरी नोवरी, शी इज माई वाइफ नाउ, मिस मुक्ति हैज बिकम ए सबॉर्डिनेट, शी इज देयर नाउ अवेलेबल, मुक्ति परिणिली नोवरी, आता दिवस चारी खेळी मिळे, और अभी बस चार पांच दिन कुछ दिन बचे है, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। तो उनको पता था कि कुछ ही दिन बचे है और मुक्ति जो है वो अभी अवेलेबल है, नोवरी, और कुछ दिन बचे है भगवान का नाम लेते लेते और फिर कुछ दिनों में भगवान के धाम चला जाऊंगा। तो इस चेतना से हमें जीना है कि सेवटचा दिस गोड़ भावा। तो हमें अट्टहास करना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है भक्ति में, ताकि आखिरी दिन जो है वो मधुर हो। तो ऐसे तुकाराम महाराज बोल रहे हैं इस अभंग में। तो जो हमारा ध्येय है भगवान के धाम जाना है, वो हमेशा हमने याद करना चाहिए कि हमें भगवान के धाम जाना है। तो अगर हमेशा हम गोल याद रखते हैं तो हमें आसानी होगी भक्ति में। सो विल नॉट बिकम क्रेजी। तो ये चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि कैसे जो आध्यात्मिक जगत है वो सबको उसके प्रति एक आकर्षण होता है, जो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो। तो बोलते हैं कि सर्च फॉर द सुपर नेचुरल इज नेचुरल, सर्च फॉर सुपर नेचुरल इज नेचुरल, कि ऐसा जगह जहां पे कुछ सुपर नेचुरल कुछ चीजें हो। तो ऐसा सभी को लगता है कि ऐसे जगत में हमने जाना चाहिए। तो जो भक्त है जो अभक्त है सबको लगता है ऐसा कुछ तो जगत होना चाहिए सुपर नेचुरल। तो सबके मन में ये इच्छा होती है कि द सर्च फॉर सुपर नेचुरल इज नेचुरल। और जो जो सबसे फेमस जो मूवी अब तक जो जिसमें सबसे ज्यादा कमाया है, जो फेमस मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग ग्रॉस जिसने ये किया है कमाया है, वो जो फिल्म है वो अवतार, जो जिसका कंसेप्ट यही है कि कैसा एक जगत है जो अलग सा, जिसमें सब कुछ अच्छा है, ऐसे जगत में लोग जाना चाहते हैं। तो उस पर फिल्म है। तो कैसे सबके एक मन में ऐसा एक ये होता है सर्च फॉर द सुपर नेचुरल। तो इसलिए हमें भी भगवत धाम के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए कि हमें जाना है। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि इन दिस वेरी लाइफ। और भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ये कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानी और श्री भक्ति मार्ग इव कोटि कंटकानी रुद्धा। तो ये श्लोक दो श्लोक हमेशा कोट करते थे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, किस लिए कि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, यानी क्या कि जो श्रेयांसी जो द पाथ ऑफ भक्ति श्रेयस प्रेयस श्रेयांसी जो पाथ है भक्ति का जो मार्ग है उसमें बहुत विघ्न आने वाले, श्रेयांसी बहु विघ्नानी और श्री भक्ति मार्ग एव कोटि कंटकानी रुद्धा, यानी जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें कोटि कोटि कंटक है ये पहले ही जानो और भक्ति पे चलते रहो, भक्ति के मार्ग पे चलते रहो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, गो ऑन एंड वन डे यू विल अचीव परफेक्शन। तो ऐसे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि वी शुड एम फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ, काफी सारा पड़ा रहेगा, इन दिस लाइफ वन शुड गो बैक होम बैक टू गॉड। तो ऐसे हमने अट्टहास करना है या प्रयत्न करना है कि भगवत धाम हम इसी जीवन में जाए, भगवत धाम फिर से लौट के नहीं आना है। तो यही हमारा गोल होना चाहिए और यही प्रभुपाद बार बार कहते हैं उनके तात्पर्य में कि परफेक्ट योर लाइफ एंड गो बैक होम बैक टू गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे।